कृष्णा, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से, श्रील प्रभुपाद कृपा से और सभी वैष्णव गुरुजन कृपा से आज का प्रवचन देने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आज का विषय है वर्ल्ड होली नेम जो अभी सामने आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हरि नाम की महिमा किस प्रकार से हरि नाम में हम मग्न हो सकते हैं और भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार चर्चा करेंगे। तो शास्त्र में खास करके नाम की महिमा का वर्णन किया है। उसके पश्चात वर्तमान आचार्य वृंद ने काफी पुस्तकें लिखी है नाम के बारे में। भक्तिनोद ठाकुर का किताब है भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि, पद्यावली, और वर्तमान आचार्य वृंद ने भी पुस्तकें लिखी है आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, भूरिजन प्रभु का जपा बुक। तो खास करके भागवत में भी नाम की महिमा आई है और कलयुग का युग धर्म जो है खास करके हरिनाम है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि परम करुणा पहुदुजन निताई गौरचंद्र सभा अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये परम करुणा के अवतार हैं और दोनों ही जगत में अवतार धारण किए हैं केवल एक ही उद्देश्य से कि कलयुग में किस प्रकार से लोग हरिनाम से लाभान्वित हो। तो पहले हम जानते हैं कि कृते धायन्ते विष्णु त्रेतायाम यतो मखे द्वापारे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। वो हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण बलराम इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि पापी दुराचारी सभी को उन्होंने उद्धार किया है। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जगाई मधाई का उद्धार किया। तो कलयुग में कोई लोग कहते हैं कि हम लोगों को तो पापी हैं, हम ये नाम जप नहीं कर सकते, हम मंदिर में नहीं आ सकते। तो पात्र अपात्र ने देखी, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने कुछ देखा नहीं, कोई पात्र है कोई अपात्र है। तो पिछले युगों में था कृते धायन्ते विष्णु त्रेता मुखे कि उसमें यज्ञ करने के लिए उसको आवश्यकता था कि उसको मंत्रों का उच्चारण करना आना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए और संस्कार होने चाहिए। द्वापर परिचय कि द्वापर में भगवान की आरती विग्रहों की सेवा करने के लिए भी शुद्धता की आवश्यकता थी और मंत्रों का उच्चारण, शास्त्र पठन इत्यादि इत्यादि। लेकिन कलयुग में कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, सारे व्यक्ति अनक्वालिफाइड बताए गए हैं। क्वालिफाइड भी व्यक्ति भी क्वालिफाइड नहीं, क्योंकि वो लोग समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं तो क्वालिफाइड है, लेकिन चाहे डिग्री की हो, पोस्ट डिग्री की हो, पीएचडी की हो, फिर भी लोग आत्मज्ञान को जानते नहीं, इसलिए वो डिसक्वालिफाइड है। ऐसे डिसक्वालिफाइड लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने क्वालिफाई कर दिया। चलो आओ, भजो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के बारे में सुनो और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो केवल कृष्ण का नाम जप करने से व्यक्ति वैकुंठ तक प्रवेश कर सकता है, नामाभास के स्टेज में भी। अगर वो शुद्ध नाम लेता है बिना कोई मुक्ति की आशा से तो उसको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है। भक्तिनाथ ठाकुर नामाभास इसमें कहते हैं कि अगर वो नाम का आभास भी करता है, शुद्ध नाम नहीं लेता, तभी भी वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है। तो इतनी नाम की महिमा है। पिछले युगों में वैकुंठ जाने के लिए भी योग्यता होती थी कि उसको वो जो पूजा सेवा है, ध्यान है, वो शुद्ध रूप से किया तो उसका फायदा होता था। और केवल कलयुग में सभी आचार्य ने कहा है कि नाम ही एक सहारा, कि कलयुग में नाम की महिमा बहुत है, और इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी से पूछते हैं कि कलयुग में लोगों को ये काल रूपी सर्प ने दंश किया है और सभी लोग अज्ञान अंधकार की इसमें डूब गए हैं, पाप कर रहे हैं और जानते नहीं कि भविष्य क्या है, तो उसके लिए इनके उद्धार के लिए कुछ सॉल्यूशन है क्या? तो नारद जी ने कहा कि अवश्य, कलिसंत्रण उपनिषद से एक श्लोक कहते हुए कहते हैं कि कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो उसके पहले वो कलिसंत्रण उपनिषद का एक श्लोक कहते हैं कि कलयुग में केवल 16 अक्षर जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना कलि कलमश नाशनम, ना तो परतरुपाय सर्व वेदिश दृश्यते, कि जो 16 अक्षरी महामंत्र है यही कलयुग के लोगों के लिए एक विधि है जो कलयुग के सारे दोषों से उसको मुक्त करता है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, कलो निर्दोष राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य जायते। कलयुग में कीर्तन एक ही विधि है, कलयुग हालांकि दोषों का सागर है, सब लोगों के अंदर केवल दोष ही दोष है, लेकिन इस दोष के सागर से बाहर आने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, यज्ञ करना, ध्यान करना, दान करना और कोई तपस्या करना, देवताओं को भी पूजा करना, ये कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है भगवान नाम के कीर्तन का। तो सब लोग चाहते हैं कि दूसरों के दोष को निकालें, मेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है, मैं पूरी तरह से शुद्ध हूं, ना मुझे काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है किस चीज का, मैं मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं, लेकिन दूसरे के अंदर देखते कि इनके अंदर सारे दोष हैं। तो शास्त्र कहता है कि सब लोग हॉस्पिटल में हैं, ये बहुत ही जगह एक हॉस्पिटल की तरह है, एक हॉस्पिटल की उपमा दी है और दूसरा एक कारागृह की उपमा दी है, जेल को बोलते हैं कारागृह। तो जेल में कौन होता है? जेल में सारे अपराधी, फर्स्ट क्लास जेल है, सेकंड क्लास जेल है, थर्ड क्लास है, जिसके पास बहुत सारा सुविधा है, प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट क्लास जेल में, सेकंड क्लास जेल में थोड़ा सा कम फैसिलिटी वाला, और थर्ड क्लास जेल में बाकी लोग आप जानते हैं। तो हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो जो जिस जिस वैज्ञानिक हो अपने अपने कार्य में है, वो सारे जो व्यक्ति है इस संसार में हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में काम करने वाले भी हॉस्पिटल में है, भगवान का हॉस्पिटल अलग है और सरकार ने बनाया हुआ अस्पताल अलग है। सरकार ने बनाया अस्पताल टेम्पररी बीमारी का इलाज करता है, लेकिन असली बीमारी का इलाज भगवान का अस्पताल में होता है, और ये अस्पताल भगवान की योजना से उनके प्रतिनिधि चलाते हैं, वो डॉक्टर हैं, वास्तविक डॉक्टर हैं। तो इसके अनुसार बीमारी क्या है? बीमारी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कलयुग में यही चार चीज दिखाई देगा आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई जन्म ले रहा है, जन्म के साथ भी उसको कई प्रकार की बीमारियां हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई बुढ़ापे की और आगे जा रहा है, और बुढ़ापे के साथ साथ उसको एक पैकेज मिला है अनेक प्रकार की बीमारियां डिसीजेस। तो चार चीजें इस कलयुग में प्रमुखता है, तो इन चीजों से छूटने के लिए और बाकी जो अन्य प्रॉब्लम जीवन में आते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, किसी से द्वेष है, किसी से लोभ है, इच्छा पूरी नहीं होगी तो उसको क्रोध आता है तो उसको मारने का जिक्र होता है। तो अनेक प्रकार की चिंताएं मन में है, किसी के प्रति ईर्ष्या के कारण, किसी चीज की प्रति आसक्ति के कारण। तो इन बीमारियों को हम रोज लोग लड़ रहे हैं, रोज रोज लड़ रहे हैं इन बीमारियों के साथ में। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा है, शरीर स्वस्थ करने के लिए संघर्ष है, पारस्परिक संबंधों में तनाव है, उसको सुधारने के लिए व्यक्ति चाहता है लेकिन वो संबंध सुधर नहीं सकते। तो भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में है, और पड़ोस के व्यक्ति वाले के साथ में है, सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं उनके साथ में झगड़ा है। तो अनचाहे व्यक्ति हमारे जीवन में भी आते हैं और उनसे भी हमें तकलीफ होता है। तो बहुत ही जगत अस्पताल कहा गया, और इस अस्पताल से बाहर निकलने के लिए कलयुग की विधि बतलाई गई है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते वेरान्यथा। कलयुग में और कोई विधि नहीं है, एक विधि है भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जप। तो एक शास्त्र में कहते हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यवंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। कि रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, तो सब में शुरुआत में और अंत में भगवान नाम का ही गुणगान किया है, हरि सर्वत्र गीयते। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत। अगर कोई नाम का उच्चारण करता है जानते हुए अजानते, कोई रास्ते में चल रहे हरे कृष्णा वाले लोग पागल है ऐसा बोल देता है, तो हरे कृष्णा वाले लोग पागल है, हरे कृष्णा बोल दिया तो उसका उद्धार हो गया, तो चालू हो गया मुख से। तो एक बार प्रभु रामचंद्र, सीतामई और विभीषण और कुछ राक्षस जो विभीषण के पक्ष में थे, भगवान की जीत होने के पश्चात अयोध्या वापस लौटने के मार्ग में थे, तो चलते चलते ब्रिज क्रॉस किए और अयोध्या पहुंच गए सब लोग। अयोध्या में आने के पश्चात विभीषण का भी स्वागत हुआ, प्रभु रामचंद्र का स्वागत हो गया और राक्षस सेना जो उनके साथ में थी उनका स्वागत हो गया। तो उसके पश्चात लौटने का समय आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे लौटें, क्योंकि समुद्र को पार करना है, तो आते समय तो भगवान थे साथ में लेकिन जाते समय कोई नहीं है। तो विभीषण ने कहा, कुछ नहीं, आपको मैं एक पर्स देता हूं, उसको बांध के लेके जाओ। तो एक कागज के ऊपर दो अक्षर लिख दे विभीषण ने श्री राम, और सबको वो पर्स दे दी और उसको एक कपड़े के से बांध के उनको बोला कि हाथ में रखो या तो अपने बाहू को बांध दो, तो उससे आपकी रक्षा होगी, आप आराम से समुद्र को पार कर सकते हैं। तो राक्षस सेना को समझ में आया कि ये क्या है इसके अंदर, तो जैसे ही समुद्र में प्रवेश किए तो पानी घुटनों तक था शुरू में, उसके पश्चात आगे आगे चलने लगे तो पानी थोड़ा ऊपर आ गया, कमर तक आ गया, सीने तक आ गया, फिर चलते चलते आगे गए तो डूबने का कोई शंका नहीं था, क्योंकि विभीषण ने जो दिया था रामबाण उनकी रक्षा कर रहा था। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा क्या चीज है इसमें कि ये हमें बचा रहा है। तो उन्होंने अपने हाथों का जो ये था कपड़े का उसको निकाल दिए, और अंदर का एक कागज का टुकड़ा था और उसके अंदर लिखा था जय श्री राम। तो बोले क्या है इसमें जय श्री राम, इसे थोड़ी आदमी बचता है। तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी उनको, तो उन्होंने उस चीज को पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डाल दिया आगे चलने लगे तो पानी सर तक आ गया, फिर सब लोग एक लहर आ गई और सबके सब डूब गए। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हरिनाम में श्रद्धा नहीं है और वो हरिनाम ले रहा है, श्रद्धा नहीं परंतु हरिनाम ले रहा है। तो व्यक्ति अश्रद्धा होने के कारण गीता का श्लोक क्या है, अश्रद्धादान पुरुषास धर्म से परंतप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। अगर व्यक्ति श्रद्धा के साथ जप करता है तो उसे कल्याण होगा, लेकिन अश्रद्धा के साथ जप करता है तो केवल पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन भवसागर में फिर से आना पड़ेगा, भगवत धाम नहीं जाएगा। कुछ समय तक जप करेगा फिर छोड़ देगा, श्रद्धा नहीं उसमें, कुछ मजा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा। संसारी लोगों की कामनाएं कुछ मिलने के पश्चात ही वो बोलते हैं कि इस मंत्र का फायदा है, लेकिन इस मंत्र से भौतिक लाभ नहीं होता है, शारीरिक व्याधि नष्ट नहीं होती है या पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता उनको, तो सोचते हैं कि मंत्र जप करने से और पीड़ा बढ़ गई, तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है तो लोग उसको छोड़ देते हैं, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का विकास कैसे किया जाए, तो एक तो आगे चर्चा होगी, चार चीजें हैं जिससे हम श्रद्धा का विकास कर सकते हैं। लेकिन भागवत कहता है कि नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनम स्तस नमामि हरिपदम, कि भगवान के नाम का जप करने से दुख भी दूर हो जाते हैं। ये गारंटी भागवत ने दी है कि ऐसा कोई व्याधि नहीं है कि भागवत के कारण हमको नहीं जाएगा, नाम संकीर्तन कारण, नाम संकीर्तन करने से सारे व्याधि सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भागवत का वचन है। और कौन बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज अपने मृत्यु के समय में कितने चिंताग्रस्त हो गए, लेकिन केवल सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कृष्ण कथा सुन के कृष्ण के नाम का उच्चारण करके वो भय से मुक्त हो गए। तो सबसे बड़ा कठिन चीज है कलयुग में वो मृत्यु है। हम लोग अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है, बुढ़ापा आता है, तो बहुत ही चिंता होती है, तनाव होता है, थोड़ा कुछ हो गया तो डर लगता है कि अभी मृत्यु आने वाली है। लेकिन जो हरिनाम का आश्रय लिया है, हरिनाम में हमेशा भगवान के संपर्क में है, कनेक्ट है, तो भगवान से कनेक्ट होने के कारण वो मृत्यु का भय भी चला जाता है। भगवान से कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है, और ये कनेक्ट होने का एकमात्र माध्यम है कि भगवान के नाम का सहारा। तो जो लोग हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको मृत्यु का भय नहीं लगा। और इसके साथ साथ में भगवान के प्रति हरि कथा का सुनना, भागवत का सुनना, और हो सके तो घर में डिटीज का सेवा करना जितना हो सके उतना। तो कलयुग में नौ विधि इसे भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कहा गया है कि श्रवणम, भगवान के नाम का अगर श्रवण, भगवान की कथा का अगर श्रवण करते हैं तो दुखों से बच सकते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है मृत्यु की तरफ, तो वो चिंताग्रस्त भयग्रस्त होता है, लेकिन अगर बुढ़ापा आने से पहले व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसे कार्य में जिसको उसमें रुचि है, कहते हैं कि छंद मराठी में, ऐसे रुचि है, उस रुचि को प्राप्त कर लिया कि ये करना है जीवन का, चाहे रीडिंग में रुचि हो सकती है, चाहे श्रवण में रुचि हो सकती है, चाहे भगवान का भोग बनाने में रुचि हो सकती है, अनेक प्रकार के व्यंजन, या कीर्तन में रुचि हो सकती है, कोई भगवान के संबंधी एक कार्य में रुचि प्राप्त करने से व्यक्ति अपने दुखों को भूल जाता है। समाज में यही अवस्था है कि लोगों को रुचि किसी में नहीं है, सबका प्रॉब्लम है कि दिन को कैसे निकालना है। जब समय आता है बीमारी का, तो व्यक्ति रुचि न के कारण उस बीमारी का चिंतन करता है हमेशा, कि मुझे ऐसा हो गया, ये डॉक्टर के पास चला गया, उसने इंजेक्शन दिया, उसने गोली दिया, इतना पैसा खर्च हो गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर बच्चों के साथ रोना, पत्नी के साथ रोना, और खाना पीना बंद, सारे समाज में टेंशन, सारे रिलेटिव के साथ टेंशन। तो अपना दुख सारे समाज को बताते चलते हैं, गांव भर चर्चा होती है कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, खाना नहीं जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, हार्ट अटैक होके चला गया। लेकिन उसका मेन रीजन है कि आप भगवान को भूल गए हैं, भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आपने आपको किसी एक चीज में भगवान के साथ संपर्क में लाना। तो भगवान के नाम से क्या प्राप्ति होती है इसकी चर्चा करना इतना आवश्यक नहीं समझता हूं कि भगवान के नाम जप करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होते हैं। आपको जो चाहिए वो नाम प्रभु प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हरिनाम प्रभु क्या कहा है, हरिनाम प्रभु को चिंतामणि कहा गया है। तो भगवान ऐसे है कि जिसको जो चाहिए वो फल प्राप्त होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के नाम जप करने से आध्यात्मिक लाभ की आकांक्षा है उसके लिए किन तत्वों की आवश्यकता है उसकी चर्चा आज की क्लास में होगी। तो कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दे दिया 8 श्लोक, उसमें से दूसरा श्लोक जो है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला एतादृशित कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश महाजनी नानुराग। कि भगवान के नाम में सारी शक्ति है, नाम रूप गुण लीला सब कुछ है, लेकिन चैतन्य महापुरुष स्वयं कहते हैं कि हम लोगों के लिए कि कलयुग में इन लोगों को कोई रुचि नहीं है, स्वाद नहीं है। और कई लोग सोचते हैं कि अभी 10 साल भक्ति हो गया, रुचि नहीं प्राप्त हुआ तो भक्ति छोड़ दें। 10 साल में रुचि आसक्ति भाव प्रेम होना चाहिए, है ना। जैसे कि मार्केट में एक बिजनेस शुरू किया और 10 साल में एक 50 लाख रुपए कमा लिए 10 साल में, तो भगवान की भक्ति इस प्रकार से बिजनेस की तरह नहीं है। हमने 10 साल आपके भक्ति में इन्वेस्ट किया तो हमें तुरंत रुचि आसक्ति भाव प्रेम प्राप्त होना चाहिए। हमारा जीवन उन आचार्यों के जैसा नहीं है जिन आचार्यों ने या ध्रुव महाराज ने या प्रहलाद महाराज ने ये तपस्या करके 5-6 साल में या 5 साल की उम्र में या 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो आजकल के जय श्री राधा गोविंद भगवान की, जय गौरचंद्र भगवान की जय। तो आजकल के ये साधक लोग सोचते हैं कि अभी तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हम मंदिर में आके 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो हमें भक्ति कैसे प्राप्त नहीं हो रहा है, शुद्ध भक्ति कैसे नहीं प्राप्त हो रहा है, हरिनाम में रुचि क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी दूसरों को भी देखते हैं तो उनसे भी अपेक्षा करते कि शुद्ध भक्ति नाम रुचि क्यों नहीं आई इन लोगों को, तो दूसरों से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, और स्वयं का भी रुचि और दूसरों का भी देखने के पश्चात अपना उत्साह को खो देते हैं। लेकिन भक्ति में चाहे रुचि हो ना हो, क्योंकि हम एक ऐसे मैदान में हैं जो लड़ाई के मैदान में है, सामने से शत्रु पक्ष के वॉर चल रहा है और उनके गोलियां, उनके तोप, उनके जो भी बम है वो पड़ रहे हैं, तो कुछ बम हमको लग रहे हैं, कुछ हम उनके ऊपर फेंक रहे हैं, तो कभी कभी जो योद्धा है वो घायल होते जा रहे हैं, तो उसी कारण भी एक युद्ध में है तो विजय होने की अपेक्षा से लड़ते रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि योद्धा लड़ रहा है युद्धभूमि में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण। प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन संस्था में जो लोग अभी तक टिके हुए हैं उनका एप्रिसिएशन करना चाहिए, वो देखना नहीं चाहिए अरे ये लोग 20 साल से 15 साल से हैं, इन लोगों को आत्मा साक्षात्कार हो गया क्या। एक व्यक्ति ने पूछा था मुझे कि प्रभु जी आपने भगवान को देखा क्या, तो ये भक्ति क्यों कर रहे इतने समय से, अगर आप भगवान को देख नहीं रहे तो भक्ति करने का मतलब क्या है। मतलब भक्ति करने का मतलब यह नहीं कि भगवान को देखना या मेरी आत्मा को देखना, क्या आप आत्मा को देख सकते हैं क्या, अपनी आत्मा को। मैंने बोला ऐसा तो शास्त्र वर्णन है कि अपनी आत्मा को देखने के लिए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए या भक्ति करना चाहिए या भगवान को देखने के लिए भक्ति करना चाहिए। हम लोग भगवान को देखने के लिए भक्ति नहीं करते, हमें पता है कि भगवान है तो हम भगवान को प्लीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भक्ति करते हैं, और भगवान जब चाहे इस उम्र में अगले जन्म में जब चाहे अपने आप को प्रकट करें, और आचार कृपा से वैष्णव कृपा से हो सकता है कि भगवान अपने आप को दर्शन दे सकते हैं, तो उसकी अपेक्षा नहीं है। तो खास तौर से आचार्य कहते हैं कि ये रुचि न होने कारण चार चीजें हैं, उन चार चीजों का हम अपने जीवन में नित्य रूप से अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम सोच सकते हैं कि इन चीजों के कारण हम भक्ति प्रगति नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम क्या है कि फिलोसॉफिकल इग्नोरेंस बोलते हैं उसको, कि तत्व का विभ्रम हो गया कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, संबंध ज्ञान नहीं उसमें कि भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध है, मैं भगवान का दास हूं, भगवान स्वामी है, इसका सुना है लेकिन विश्वास नहीं है, भगवान स्वामी है और मैं दास हूं, इसको अप्लाई नहीं किए। स्वामी के रूप में कृष्ण को देखना और सेवक के रूप में सेवा करना, लेकिन हमें जब तक ये भावना है कि भगवान जो चीज कर रहे हैं हम लोग करना चाहिए, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो इस प्रकार का नहीं कि सख्य रूप में है, भगवान स्वामी है तो सेवक को भगवान की इमिटेशन नहीं करना चाहिए, सेवक को भगवान का केवल एक मिनियल सर्वेंट बोल के सेवा करना चाहिए। एक बार शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने एक लोटा दिया था, उनको लोटा दिया था, कॉपर का लोटा था, और उसको कहा कि बहुत दिन से इसके ऊपर मैल चढ़ गया है, इसको अच्छा से साफ करो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु गार्डन में गए, गार्डन में जाके नींबू वगैरह अच्छा सा पाउडर लगा के उसको साफ किया और लोटा एकदम चमकने लगा जैसे कि नया है। तो प्रभुपाद को लाकर दिखाया कि प्रभुपाद ये देखो लोटा कैसा है, अभी एकदम कॉपर का लोटा नया दिख रहा था। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, रख दो काम। तो उनको लगा कि प्रभुपाद मुझे अप्रिसिएशन करना चाहिए कि कितना अच्छा सेवा किया, गुड थैंक यू, देखो आपका भी हृदय ऐसी तरह से शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही लोटा रखने के लिए बोला। तो शुद्ध कृति बताते हैं कि मैं प्रभुपाद से एप्रिसिएशन सोच रहा था कि प्रभुपाद एप्रिसिएशन करेंगे मेरा, लेकिन गुरु कैसे होते हैं, शिष्य के मन में जो चीज है उसको बराबर वो उसका अहंकार कट कर देते हैं, एप्रिसिएशन नहीं क्या वो जानबूझ के नहीं, लेकिन ये भगवान की योजना है। तो बोलते हैं कि मुझे अहंकार होता था मेरी सेवा से कि मैं प्रभुपाद का सेवा कर रहा हूं और इतनी अच्छी सेवा किया तो थैंक यू बोलना चाहिए प्रभुपाद ने, तो गुरु से अपेक्षा थी कि थैंक यू बोलना। तो बोले मेरे अहंकार कट किया, मैं बाद में समझ गया कि मैं कितना मूर्खता से व्यवहार करता प्रभुपाद के साथ में, मुझे सेवा लगा कि उन्होंने उपकार किया मेरे ऊपर और मैं चाहता हूं कि थैंक यू कहे प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है, तो प्रभुपाद ने मुझे सिखाया कि मैं प्रभुपाद का समझता कि मैं प्रभुपाद का सर्वेंट हूं, प्रभुपाद का व्यक्तिगत सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट हूं, लेकिन प्रभुपाद ने मुझे यह सिखाया कि आप मेरे व्यक्तिगत सेवक नहीं हैं, आप तुच्छ सेवक हो, है ना, तुच्छ सेवक। तो देन ही रियलाइज कि श्रुतकृति बोलते हैं कि हम अपने आप को व्यक्तिगत सर्वेंट समझते हैं, महत्वपूर्ण सेवक समझते हैं, और उसी अहंकार के साथ भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करते कि भगवान मुझे थैंक यू कहे, भगवान मुझे एप्रिसिएशन करे कि कितना अच्छा सेवा कर रहा है। लेकिन इस सेवक को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बाकी सेवकों से भी अच्छा सेवा कर रहा हूं, बाकी सेवकों से भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे कि आप बड़े महान भक्त हो, है ना। तो मिनियर सर्वेंट मीन्स कुछ नहीं, आप सिंपल है। तो ये प्रभुपाद ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझाया, तब शुद्ध कीर्ति प्रभु उस समय से अपने आप को अलग मोड में चले गए कि मैं एक तुच्छ सेवक हूं, बस गुरु का सेवा मिल रहा है तो मुझे नित्य रूप से सेवा करना चाहिए, चाहे कौन सा सेवा हो, बर्तन साफ करने का हो, प्रभुपाद जी का कपड़े धोने का हो, या प्रभुपाद के लिए कुकिंग करना हो, जो भी सेवा है मैं एक सेवक के रूप में, तुच्छ सेवक के रूप में कर रहा हूं। तो ये तत्व विभ्रम होने कारण एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन और ग्लोरिफिकेशन जो है वो व्यक्ति चाहता है। और ये तत्व विवरण क्या है, मैं तुच्छ सेवक हूं, इसको भूलना कि भगवान का मैं तुच्छ सेवक, मुझे जो भी सेवा मिली मेरा महत भाग्य है, इसके लायक मैं नहीं हूं। महाराज जी को एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि मैं पहले भक्ति में आया था तो बहुत उत्साह था, उसके बाद में आ गया तो उत्साह डाउन होने लगा। तो महाराज जी ने कहा कि पहले भगवान आपको प्रोत्साहन दे रहे थे और तब जाके आप भक्ति कर रहे थे, अभी भगवान ने आपको इंस्पायर करना बंद कर दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कितना मेरी सेवा कर सकते हो। आपको पहले लोग पहचान रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि आप डिवोटी बन गए, आपको एप्रिसिएशन हो रहा था, लेकिन आपको एप्रिसिएट अभी कोई नहीं करता, इसलिए आपको लग रहा है कि रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे होगा। इसलिए वो व्यक्ति भक्ति से उत्साह कम कम होते चला गया। लेकिन कोई रिकॉग्नाइज करे तो हम भक्ति करते, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करे तो भक्ति नहीं करते। महाराज ने कहा कि भक्ति इसके ऊपर नहीं है, भक्ति किसके ऊपर है कि विदाउट सेल्फिश मोटिव्स, कि कोई सेल्फिश इच्छा नहीं है कि मेरा गुणगान हो, चाहे मंदिर खड़ा किया हो लेकिन आपको कोई प्रशंसा नहीं किए तो भी आपके अकाउंट में वो जाएगा कि ये प्रभु ने मंदिर का निर्माण किया, तो भगवान उसका नोट डाउन करेंगे कि उसको क्या देना है आगे चल के। लेकिन तुरंत अगर कोई मांगता है कि मुझे इसका रिकग्निशन मिलना चाहिए तो भक्ति से लाभ नहीं होगा इतना। तो तत्व विभ्रम ये कहते हैं। तो दूसरा वो कहते हैं कि अपैथी, अपैथी या उसको बोलते कि औदासीन्य, भक्ति में निरुत्साह होना, औदासीन्य होना, क्योंकि जब नए होते हैं तो उत्साह होता है लेकिन पुराने हो जाते हैं तो थोड़ा सा रोज रोज का प्रैक्टिस वही है, कीर्तन करना, नाम को सुनना, दर्शन करना, कथा सुनना, तो उसमें औदासीन्य रहता है। औदासीन्य मतलब केयरलेसनेस, थोड़ा कि उसमें रस को प्राप्त नहीं हो तो उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको खो देना कि उसमें कुछ है, कुछ दम है, तो वो भी अज्ञान कारण है, इग्नोरेंस के कारण है। और जब तक व्यक्ति समझता नहीं कि ये जो औदासीन है इसको कैसे दूर करे, तब तक वो उसी स्टेज में रहेगा। तो बोलते हैं कि ऐसे वैष्णव भक्तों का संग करें कि जो नित्य रूप से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ सेवा करते हैं और प्रेम के साथ नाम भी जप करते हैं, कि चाहे उतना यश नहीं प्राप्त हो रहा लेकिन वो लगन को छोड़ते नहीं है। लगन को छोड़ने वाले भक्तों का संग किए तो फिर हम भी छूट जाएंगे। इसलिए वो कहते कि ऐसे वैष्णवों का संग करें कि जिन वैष्णवों को भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है और नाम जप उसके कारण कर रहे हैं। नाम जप में व्यक्ति अगर आनंद की अभिलाषा करता है तो फिर वो आनंद न मिलने कारण औदासीन्य हो जाता है। तो महाराज जी को वही प्रश्न में महाराज जी कहा कि वी आर नॉट चैंटिंग फॉर गेटिंग द हैप्पीनेस, मुझे आनंद मिल रहा है क्या, वी आर चैंटिंग फॉर कृष्णस प्लेजर, भगवान को आनंद हो रहा है। तो महाराज ने कहा कि इवन इफ यू आर नॉट चैंटिंग अटेंटिवली, यू आर नॉट गेटिंग द प्लेजर, बट स्टिल कृष्ण इज एंजॉइंग, भगवान आनंद ले रहे हैं। आपको बरुज नहीं सा रहा है, आपको कठिन संघर्ष हो रहा है, इसका मतलब भगवान आनंद ले रहे हैं आपके जप में। तो आपको आनंद चाहिए तो भगवान आनंद देने वाले नहीं है, यू आर नॉट द एंजॉयर, यू आर बींग एंजॉयड, ऐसा महाराज ने कहा। तो दूसरे इसमें दूसरा सोल्यूशन देते हैं कि चैंट इन फ्रंट ऑफ तुलसी देवी, कि तुलसी महारानी के साथ जप करो, या तो राधा कृष्ण का पिक्चर रख के उसके सामने जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का स्टीकर रख के उसके सामने जप करो, या तो कहते हैं कि भगवान के लीला स्थली में, जहां पर भगवान ने लीला की है उस स्थली में पोटेंसी है, वहां पे जाके जप करो। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे एक स्थान पे जप करो जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और अपने सर के ऊपर एक कपड़ा डालो, पूरा अंधकार है, और कपड़ा डाल के आंखें बंद करके शांति से आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, आमने सामने कुछ नहीं, आंखें खोलना नहीं, आंखें खुल भी गई तो सामने कपड़ा होने के कारण आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि देन द इन अटेंशन जो है वो निकल जाएगा। दूसरा कहते हैं कि लेजीनेस, तो ये जो लेजीनेस है, लेजीनेस का मतलब है कि जप करना लेकिन डल माइंड के साथ, तो इतना बॉडी थक गया है, माइंड थक गया है, फिर भी ना इस क्वांटिटी को पूरा करना है, जप को खत्म करना है। लोग बोलते हैं खत्म किया मैंने, 16 माला खत्म किया, तो फिर भगवान भी बोलते हैं कि अच्छा आपने मेरे को खत्म कर दिया, मैं भी आपको खत्म कर देता। मैंने कई भक्तों के मुख से सुना है, नए भक्त कांग्रीगेशन, तो आज का जब पूरा किया नहीं बोलते, आज का जब खत्म किया, अभी खत्म क्या करना है उसको। भाई थोड़ी आदमी को खत्म करने जैसा है। तो जब को पूरा किया बोलो, अच्छा लगेगा भगवान को। तो ये अज्ञान है, लेजीनेस है, डल माइंड के साथ जप किया है तो इसके लिए रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। या तो जप करते करते कोई चीज को उठा लेना, फिर उसके बारे में सोचना, या दूसरों के साथ चर्चा करना, या किसी को कॉल करना उस समय, या अपने लेटर्स लिखना है, किसी को ऑफिशियल ये करना है, मेल करना है, अन्य चीजें उस जप के समय सोचना, ये मेरा हो गया, ये मेरा रह गया, इसको फोन करना है, इसको लेटर लिखना है, ईमेल करना है, तो बार बार उस चीज को मन में लाना कि ये चीज बाकी है, वो चीज बाकी है, तो ये लेजीनेस के कारण होता है, डल माइंड, कि भगवान के साथ संबंध है मेरा, उसको पहले क्लियर करना है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि जब अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दोगे तो बाकी सारे काम भगवान कर लेंगे। पहले जप किया तो बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे, व्यक्ति वहां पर नहीं है तो आ जाएगा टाइम पे, भगवान अरेंज करेंगे उसको। लेकिन आप ऑफिशियली गए काम करने के लिए जब छोड़ के, और वहां पे जाने के बाद सोचते कि व्यक्ति 2 घंटे नहीं है वहां पर, तो सोचते कि वो मेरा टाइम कैसे आएगा, फिर जब की माला भी साथ में नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, फिर फोन करते बैठते उस व्यक्ति को तो व्यक्ति मिलता नहीं जल्दी, तो उस समय से 2 घंटे चला जाता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर निराश होकर वापिस आता है तो समझता है कि मेरा जप का समय चला गया, वो भी समय चला गया, सेवा भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से केवल हरिनाम का जप ना करने कारण, लेजीनेस पोस्टपोन करने कारण उसको कोई भौतिक काम भी नहीं होता। तीसरा कहते हैं, इसको रेमेडी क्या है, रेमेडी है कि ऐसे भक्तों का संग करो, वैष्णव भक्तों का जो टाइम पास नहीं करते, है ना, डू नॉट वेस्ट द टाइम, और हमेशा अपने आप को किसी सेवा में व्यस्त करते हैं, चाहे रीडिंग हो, चैंटिंग हो, क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, ड्रेसिंग हो, ऑफरिंग हो, तो कुछ ना कुछ सेवा में अपने आप को एंगेज करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा ऐसे वैष्णवों का संग करने से अपने आप प्राप्त होगी, और अपने आप क्या होगा, कृपा के साथ साथ उत्साह बढ़ेगा, और जप करने में कॉन्सेंट्रेशन होगा थोड़ा सा, कम से कम भटकेगा मन, लेकिन जो डल माइंड है उसके साथ नहीं, तो फिर से मन आएगा, और 16 माला करते समय अच्छा लगे कि ठीक है 16 माला अच्छा सा हो गया, जो जड़ता थी वो जड़ता निकल गई। और तीसरा महत्वपूर्ण बताता है कि डिस्ट्रैक्शन, तो एक प्रकार का ये विक्षेप कहते हैं संस्कृत में इसको, डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि विक्षेप कब होता है कि किसी प्रकार का मोह है, कि खाने पीने चीज का मोह है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने का मोह है, फैशन करने का मोह है, या ऐसी कुछ चीजों के पीछे हम लगे हैं जिससे हरिनाम का कोई संबंध नहीं है, या हमको किसी ऐसे पद की प्राप्ति करने की इच्छा है, पैसे की प्राप्ति करने की इच्छा है, तो उसके कारण विक्षेप आता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे आसत तृष्णा जो है, आसत तृष्णा को निकालना चाहिए, उसके कारण विक्षेप आता है। और आसत तृष्णा क्यों आती है, आसत तृष्णा आने के कारण है कि वैष्णव अपराध, कि वैष्णव भक्तों के दोष देखना, उनकी स्तुति नहीं, उनकी निंदा करना, और उनकी सेवा न करना, अपने आप सेवा न करने से भी आसत तृष्णा बढ़ती है। कि उनको देख के ऐसा लगता नहीं कि ये वैष्णव है, उनको कुछ सेवा करने का योग है तो करना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए, उनसे कुछ लेना चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है। केवल हरे कृष्णा बोलने से भी सेवा होती, लेकिन हरे कृष्णा बोलने का भी इच्छा नहीं होता भक्तों को देखने के बाद। तो ऐसे केवल आपने आप में भक्ति करने की जो इच्छा है, किसी को कोई संपर्क नहीं, बस मेरा भक्ति, तो इससे क्या होता है, विक्षेप हो जाता है धीरे धीरे वैष्णव के प्रति अनादर और वैष्णव निंदा। तो उसी कारण फिर भौतिक तृष्णाएं बढ़ती है और भौतिक तृष्णा फिर रिकॉग्निशन के साथ में, एप्रिसिएशन के साथ में आती है। तो कोई मुझे यहाँ पूछता नहीं, कोई मेरा वैल्यू नहीं यहाँ पर, तो निंदा होती है। तो वो कहते हैं कि चीटिंग प्रोपेंसिटी, कभी कभी दूसरों को फंसाने के पीछे लग जाते हैं ऐसे कारण। तो इसी तरह से मन हमको फंसाता है, दूसरों को फंसाता है, लेकिन मन हमको फंसाता है कि तुम्हारा जप चल रहा है, तुम्हारी साधना चल रही है ठीक से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको रेमेडी है कि किस प्रकार से इन आकर्षणों से मुक्त हो जाए, फॉलोइंग द वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव बिहेवियर। कि 10 साल होने के बाद या 15 साल होने के बाद हम वैष्णव आचार संहिता को भूल जाते हैं। शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन जो पहले का वैष्णव एटिकेट था, वैष्णव आचार संहिता था, वो भूल जाते हैं। तो मैं वरिष्ठ भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था कि प्रभु जी वैष्णव आचार संहिता क्लास होना चाहिए मंदिर में, कि हम लोग शास्त्र की तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन वैष्णव आचार संहिता के बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि एक वैष्णव का व्यवहार कैसे होना चाहिए, बोलना कैसे होना चाहिए, सेवा करते समय या कोई चीज का इस्तेमाल करते समय उस चीज के प्रति किस प्रकार से आदान प्रदान होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु जो ये है, मंदिर के चीज हो या पर्सनल चीजें हो, भगवान की सारी चीजें हैं, या एक रूम में रहते समय भक्तों के साथ में, कि दूसरों की सेंसिटिविटी जो है उसको खत्म ना करें, कि सेंसिबल रहना चाहिए एक दूसरे के साथ में। तो भावनाओं का आदान प्रदान जब तक नहीं होता तब तक ये विक्षेप खड़ा होता है। मैं तो एक महीने के लिए जब आउट ऑफ स्टेशन गया था और मैं भक्तों के आशीर्वाद से उनसे परमिशन लेके गया था, तो 15-20 दिन करीब करीब 3-4 हफ्ते बाहर था, और जब लौटने का समय आ गया तो मुझे यहां से जाते समय भी आशीर्वाद लिया था सब भक्तों से, लेकिन वहां से लौटते समय मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कितने समय के बाद मंदिर में आ रहा हूं। तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा कि भक्तों का संग ही जीवन का लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। वहां पे सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ था साथ में, लेकिन भक्तों का संग नहीं था। तो मैंने सोचा कि मंदिर में जितना प्रोटेक्शन उतना बाहर प्रोटेक्शन नहीं है, उतना साधना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो भक्ति में भक्तों का संग का इंपॉर्टेंस पता चलता है जब हम मंदिर के बाहर कई हफ्तों के लिए है ना। भगवान ने मेरे को सिखाया कि ये मंदिर ही सर्वस्व है हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो बाहर प्रसाद मिल सकता है, कोई आपको काम में नहीं लगाएगा, आपकी सेवा कर सकता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं है, लेकिन उसमें शास्त्र श्रवण नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, हरिनाम नहीं है, कीर्तन नहीं है। तो चाहे सब कुछ मिले लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलता तो फिर से ये विक्षेप आ जाता है, असत तृष्णा। तो ये कारण है। तो हमें हमेशा ऐसे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना चाहिए कि जहां पर फैसिलिटीज हैं, आराम है, लेकिन भक्ति नहीं है, है ना। भक्ति नहीं है लेकिन वहां पे सब कुछ मिला है आपको, गाड़ी मिला है। मुझे किसी भक्त ने कहा था कि प्रभु जी आपको तो संन्यास रूम मिल गया है ना, कितने दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए, तो आपको तो संन्यास रूम मिल गया, देखो कितना अच्छा फर्नीचर है, नीचे क्या लकड़ी का ये है और रूम इतना पॉश है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई इसमें मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अकेला हूं कोई भक्त साथ में नहीं है, 24 घंटा अकेला, तो मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं लग रहा है कि सन्यासी रूम हो या कुछ हो, टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है, ये है वो है, प्रसाद के लिए फ्रूट्स है, बाकी भाकरी गरम गरम मिल रहा है, मतलब कुछ नहीं है उसमें। लेकिन मैं जब बाहर आऊंगा, भक्तों से मिलूंगा, यहां पे सबके साथ बैठूंगा, तो मुझे वो आनंद मिलेगा, वो अंदर नहीं है। इसलिए ये जो भौतिक तृष्णा है वो कुछ मन को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि उसने पहले ही उससे बढ़िया स्वादन किया है। ये कार नहीं संतुष्ट कर सकती, अच्छा वेल फर्निश्ड रूम जिसमें एसी हो वो संतुष्ट नहीं कर पाती, तो केवल संतुष्ट कर पाती भक्तों के संग में भक्ति, ये संतुष्ट कर पाती। तो हमें विक्षेप से बचने के लिए ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमेशा ऐसे कार्य में लग चुके हैं। और दूसरा बताते कि जब आसक्त तृष्णा बढ़ती है तो हमें, जैसे जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, नरसिंह जयंती आती है, गौर पूर्णिमा, ऐसे फेस्टिवल्स और एकादशी, ऐसे फेस्टिवल में उपवास करना चाहिए आसक्त तृष्णा को निकालने के लिए। तो भगवान कृपा से इन फास्टिंग करने के कारण अपने आप आसक्त तृष्णा निकल जाती है। कि शारीरिक स्तर पे हम ज्यादा होते हैं तो आसक्त तृष्णा अटैक करती है, लेकिन जब शारीरिक स्तर से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से हम ज्ञान में आ जाते हैं कि हमारे लिए कुछ काम का नहीं। जैसे पहले खाने की चीजें में बहुत आनंद था, है ना, लेकिन जब भगवान के प्रसाद का टेस्ट लग गया तो बाहर की चीजें खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और अभी अंदर के प्रसाद में ज्यादा रुचि बढ़ने लगी, वो भी डेंजरस है, बढ़ने लगी। तो उसका क्या है कि कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं लेना, कभी लंच नहीं लेना, कभी डिनर नहीं लेना, तो उसको थोड़ा कट ऑफ कर दिया तो उसमें कुछ है नहीं लगता कि ब्रेकफास्ट चुक गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, है ना। थोड़ा नींबू शरबत पी लिया, थोड़ा सुबह दूध पी लिया तो कुछ लगता नहीं कि अरे ब्रेकफास्ट में ये आइटम था या वो आइटम था, बाद में क्या होने वाला है उसको सबको पता है। चाहे ब्रेकफास्ट में महाराज जी कहते हैं एसोसिएशन के बारे में कि बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के लोगों का जो संघ है उस प्रकार से है कि किसी ने एक बार गुलाब जामुन खाया, है ना, और गुलाब जामुन दिखने तो एकदम बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन दूसरे दिन उसने पूछा कैसा लगा आपको, गुलाब जामुन किधर है। तो शुरू में खाते समय आनंद आया, लेकिन उसको देखा कि अरे ये गुलाब जामुन तो अच्छा था लेकिन क्या हो गया, इसका पिस्ता के रूप में परिवर्तित हो गया ना। तो बोलते कि एसोसिएशन ऑफ दिस बॉडी, आपके बॉडी का संग करके उस गुलाब जामुन का जो रूप ये सब कुछ था, टेस्ट था, उसको बिगाड़ दिया आपने। महाराज जी का एक सुंदर लेक्चर है, उसे बोलते हैं। तो बोलते कि एसोसिएशन ऑफ वर्ल्डली माइंड, वर्ल्डली पीपल लाइक दिस, या अच्छे व्यक्ति को विष्णा के समान कर देता है इस तरह बॉडी। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के संग में रहना चाहिए जो आसक्त तृष्णा से परे हैं। और दूसरा, इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन द फेस्टिवल्स विल रिकाइंडल द जॉइन भक्ति, कि कीर्तन करने में आनंद आएगा, फिर जप करने में आनंद आएगा, सेवा करने में आनंद आएगा, ऐसे भक्तों का संग करने से। तो वो भक्तिनो ठाकुर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार इसी बारे में पूछा गया, उनके एक शिष्य थे, कि प्रभुपाद जी मुझे हरिनाम करते समय इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, और मैं अपने राउंड्स को फिनिश करता हूं, आई मस्ट हैव फिनिश माय राउंड्स सो क्विकली, सो कैन आई कैन सॉल्व प्रेसिंग प्रॉब्लम। तो कपड़ा प्रेस करने का मेरा सेवा है तो उसको मुझे, तो मैं वही सोचता हूं जब करते समय। तो वो कहते हैं कि जस्ट चैंट जपा, डोंट थिंक ऑफ बिजनेस, डोंट थिंक ऑफ पर्सनल नीड्स और फैमिली कंसर्न्स। ये जो माइंड है हमेशा आपको किसी न किसी चीज में लगा दे रहेगा, ये बाकी है, वो बाकी है, ये करना है वो करना है, प्रोग्राम ही उसका चालू रहता है अंदर। तो लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इवन इफ द मटेरियल थॉट्स कम, जैसे मेरे पत्नी के बारे में विचार आ रहा है, बच्चों के बारे में विचार आ रहा है, घर के बारे में विचार आ रहा है, तो टू थिंग्स विल साइमल्टेनियसली गो ऑन, एक आपका जपा और दूसरा ये मटेरियल बिजनेस अफेयर्स। तो क्या करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ज्यादा फोकस करो, जोर से बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, क्या होगा धीरे 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 हरिनाम के ऊपर फोकस होगा और ये मटेरियल थिंग्स भगवान विषयों से विरक्त कर देंगे। तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट निकल जाए, क्योंकि आप हरिनाम में लग गए तो अंतरंगा शक्ति आपको उसमें प्रयास करने के पश्चात उसे फोकस करेंगे, लेकिन आप छोड़ दिए और उसी मन को उस विचारों में लगा दिए, विचार आ रहा है इसके सोचते उसके बारे में, तो हरिनाम बगल में रह जाएगा बाजू में और विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, फिर माया उसके ऊपर हावी हो जाएगी। तो माया विल बी डिफीटेड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा विल विन एंड माया विल डिफीट। भगवान ही अपने आप को शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यस, तो दूसरा बोलते हैं विक्षेप को एक करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ष है त्रिणादपि सुनिचेना, कि हम लोग जप करते समय शिक्षाष्टकम के ऊपर फोकस नहीं करते। पहले भक्ति में आते थे तो फोकस करते थे कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता न त्रिणादपि सुनिचेना तरर्व सहिष्णुना, उसके बाद आई नंद तनुजा किंकरम पतितम मा विषिभामंदो, उसके बाद नयनम गलद शुद्धारया वदनम गदगद रुद्धया युगायितम निमिषेण, ये सब फोकस करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, चैतन्य शिक्षाष्टकम को जप में कभी सोचते नहीं है। मुझे क्या नाम प्रभु जी का, बहुत सीनियर वैष्णव गोपीनाथ में गोपालाचार्य के ये है व्याही बोलते हैं ना उसको, अपने सखीचंद प्रभु के फादर इन लॉ, प्रभु जी का नाम बुढ़े हैं एकदम, काउंसलर थे सतारा में, तो उनके साथ मैं ऐसे चर्चा करता था हरिनाम के ऊपर, तो बोलते कि थ्री थिंग्स वी शुड रिमेम्बर, कि जब करते समय हमें तीन चीजों को याद करना चाहिए। बोले क्या, वाई आई एम चैंटिंग, मैं क्यों जप कर रहा हूं, तो चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतु दर्पण मार्जनम भ महादेव निरापण श्रेय करवचंद्र कीर्तन विद्यावधु जीवनम, कि भगवान ने होली नेम दिया मेरे शुद्धिकरण के लिए और इस हरिनाम का जप करने कारण शुद्धिकरण अपने आप होगा, मार्जन होगा और विद्यावधु जीवनम, और क्या लास्ट में यह सरात शरण नहीं उसका क्या है कि श्रेय कह रहे चंद्रिका विद्यावधु जीवनम, ऐसा ही है ना। तो ये जो वधु का उपमा दिया है कि ये भगवान की पत्नी बनने के लिए, बींग एंजॉयड बाय कृष्णा, कि भगवान कैसे एक पति का पत्नी के साथ कैसे संबंध होता है, वैसे भगवान के साथ मेरा संबंध अपने आप जुड़ जाएगा हृदय शुद्धिकरण के साथ साथ। दूसरा बोलते हैं हाउ वी शुड चैंट, किस प्रकार से जप करना चाहिए, तो चैतन्य चरितम चैतन्य शिक्षा इसका शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक बताते हैं कि त्रिणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तनीय सुधारी, कि इस भावना में हाउ टू चैंट, कि व्यक्ति को एक घास के तिनके के समान अपने आप को समझना चाहिए एंड रिस्पेक्ट अदर्स एक्सपेक्टिंग नन इन रिटर्न, तो कुछ रिस्पेक्ट का अपेक्षा नहीं लेकिन दूसरों को रिस्पेक्ट करना, तो ये भावना में जब जब होगा तो चैतन्य महापुरुष संतुष्ट हो जाएंगे और वो हरिनाम को शक्ति प्रदान करके फिर जाके वो आई नंद तनुजा किंकरम पतितम विषय वो भाव आ जाएगा, न धनम न जन्म न सुंदरी का वो भाव आएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आखिरी में आई नंद तनुजा, कि आज के ही एक कोर्ट में महाराज ने एक कोर्ट आया था महाराज का, तो उस कोर्ट में महाराज जी कहते कि अनलेस एंड अंटिल यू फील दिस मटेरियल यू आर डिसगस्टेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि भौतिक जगत से मैं एकदम त्रस्त हो गया हूं, मुझे भौतिक जगत में आना ही नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू कम इन द मटेरियल वर्ल्ड, मुझे आना ही नहीं, एकदम आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आर यू जस्ट वॉन्ट टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा होली नेम, आई कृष्णा आई एम योर्स एंड आई वॉन्ट टू सर्व यू, आई वॉन्ट टू प्लीज यू, तो मुझे जगत से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आपको ये नहीं होगा कि अंदर से मुझे जगत में कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, केवल भगवान आपका सेवा और आपका हरिनाम प्राप्त करना है, तो ये जब आएगा जीवन में तो बोलते हैं कि यू आर क्वालिफाइड टू अटेंड कृष्णस अवॉर्ड, तो आप भगवत धाम जाने के लिए पात्र हो सकते हैं। भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो भी, जैसे कि गौर किशोर बाबूजी महाराज अपने जप करते समय सोचते थे कि मुझे कुछ सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कुछ कोई लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, तो लोग आते थे उनसे पूछते थे कि महाराज इसका सोल्यूशन बताओ उसका सोल्यूशन बताओ, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले सब बेकार की बातें हैं, मेरे भजन में बाधा है, तो चले गए एक जगह पे, ऐसी जगह पे वहां लोग नहीं आते, तो जाके टॉयलेट के पास जप करते थे और रोते थे आंखों से, इतना रोते थे कि कृष्णा मुझे जगत में नहीं आना है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा सोचते हैं कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को भक्त बनाया तो भगवान खुश हो सकते हैं। भगवान खुश हो सकते हैं केवल अपना हृदय शुद्ध करके, है ना। अगर भगवान कृपा से, भक्तों कृपा से कोई उसका लाभ उठा सकता है, भक्त बन गया, जप करने लगा, तो सौभाग्य की बात है कि प्रभुपाद के काम में मैं आ गया। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग भक्त बन रहे क्या मेरे कारण, मैं प्रचार कर रहा हूं क्या, प्रभुपाद को मैंने क्या संतुष्ट किया। कई कई बार फोकस होता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं 10,000 लोगों को भक्त बनाऊं, है ना। 10,000 लोगों के घर में बिटिज जाना चाहिए, हा? और 10,000 लोग एकदम शुद्ध भक्त बनना चाहिए, तो मेरा नाम थोड़ा हो जाएगा प्रभु जी ने 10,000 भक्त बनाए, और नाम मिलता है उससे, इतना वितरण हो गया पुस्तकों का कि प्रभु जी इतने क्रांतिकारी भक्त बन गए, क्रांति किया उन्होंने। तो वो क्या है, मान सम्मान है। तो हमें जब तक ये हरिनाम में रुचि नहीं आता तब तक ये बांटने का भी ये नहीं होगा। बांटते समय एनर्जी जाएगा, टाइम जाएगा, मानसिक चिंतन होगा, अकाउंटिंग, उसका पैसा नहीं आया, उसका पैसा नहीं है, इसको बिल भरना है, उसको बिल भरना है, इसको सेवा में लगाना है, उसको सेवा में लगाना है, ये प्रभु जी ने क्या किया, उसका मेंबर कितना हो गया, इसका मेंबर कितना हो गया। तो सारे कांग्रेगेशन में दिन भर फोन उठाते बैठेंगे, अभी चैंटिंग के लिए समय नहीं है। तो इतना व्यापार कर दिया कि व्यापार में ही दिन लग गया पूरा संभालने के लिए। तो मैंने एक भक्त से बात किया था कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया कि आप 50 गांव में प्रचार करो, 50 गांव में आपको सेंटर खोलना है, तो मैं बोलूंगा कि 50 गांव ने मुझे सिर्फ 2 या 5 गांव भी दे दिए तो चलेगा, लेकिन मैं 50 गांव में प्रचार नहीं करूंगा। क्यों? 50 गांव में जाके प्रवचन देना आसान है, लोगों को भक्ति सिखाना, हरिनाम में लगाना, लेकिन 50 गांव के लोगों को हैंडल करना, उनके साथ अपना संबंध बनाए रखना, उनको टाइम देना, एनर्जी देना, उनको आदान प्रदान करना, ये संभव नहीं है। मैंने कैलकुलेशन किया उनके साथ में चर्चा करते हुए कि 50 गांव में 50-50 लोग कितना हो गया, 2500, 2500 लोग, है ना। 2500 लोगों को महीने में एक एक घंटा दे दो, एक एक घंटा 2500 घंटा, हमारे पास कितना घंटा है दिन में कैलकुलेट के, सोने का समय, इसका समय नहीं दे सकते हम, महीने में एक घंटा 2500 लोगों को नहीं दे पाते। उसको हरिनाम दे दिया लेकिन उसको शिक्षा ही नहीं दी, ज्ञान नहीं दिया उसको, हरिनाम दे दिया, ये करो वो करो बोल दिया, चले गए, हमें सेंटर खोल दिया, और प्रवचन के समय आ गया, फिर बाद में उसको कोई कल्टिवेशन नहीं, कुछ नहीं, प्रवचन दिया 1-2-3 महीने के बाद में कब नंबर आया था। लेकिन ये प्रचार नहीं है, इसलिए गौर किशोर बाबाजी महाराज कभी ये नहीं सोचे कि सभी ना भारत के सभी लोग भक्त बनना चाहिए, कि मेरा काम नहीं है सब भक्त बनना चाहिए। इतना होता तो भगवान को भी 100 लोगों को भेज देते नीचे, जाओ सबको भक्त बनाओ। भगवान से ज्यादा हमारे पास कंपैशन नहीं, हमारे पास कंपैशन अपने लिए होना चाहिए। पहला अपने लिए कंपैशन नहीं है और दूसरों के लिए हम कंपैशन करने जाते हैं तो भरत महाराज जैसा अनुभव होने लगता है कि हमने सारा समय गंवा दिया लेकिन हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए अपनी कैपेसिटी को भी जानना आवश्यक है कि क्या मैं इतने लोगों को समय दे सकता हूं क्या। अगर नहीं दे सकता तो बेटर है कि 2 गांव में प्रचार करो, 2 गांव के लोगों को 2 सेंटर संभालो। तो ज्यादा अभिलाषा की भक्ति में कि प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए मुझे बहुत सारा जिम्मेदार लेना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो वो पूरा न होने के कारण संघर्ष होगा जीवन में, भक्तों के साथ संघर्ष है, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था फुलफिल नहीं हो गया, तो ना फुलने की फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो फिर जो भी हरिनाम करना है वो हरिनाम करने मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं काम हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। तो वी आर नॉट कम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, टू मेक आवर प्रोजेक्ट, लेकिन हम इस जगत की ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करना कि भक्ति में कम से कम मंदिर में जो सेवा है, प्रभुपाद ने जो निर्धारित किए गए सिद्धांत है उसका पालन करते, जो हमसे इजीली हो सके इजीली करना, उसको ज्यादा ये करने के लिए प्रयास करना, फिर मंदिर में जाके बाहर जाके प्रोजेक्ट करने की इच्छा होगी कि अंदर काम नहीं हो रहा है तो बाहर जाके प्रोजेक्ट करता हूं, ये बाहर से बाहर कब चले गए पता नहीं चलेगा, इसलिए ये पॉइंट बहुत आवश्यक है। तो दिस हो गया, तो आखिर में एक कहते हैं कि मन भौतिक रस आस्वादन का भोगी है, तो उसको भोग अवस्था से बाहर निकालने के लिए भगवान के नाम में कीर्तन में हम करेंगे तो हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो दूसरों के पास क्या है, दूसरों के पास हमने देखा कि इसके पास वो है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो हम सोचते हैं कि उससे भक्ति होती है, उससे भक्ति होती है, लेकिन इससे भक्ति नहीं होती। तो भुरजन प्रभु कहते हैं कि क्या सौंदर्य उसके पास है, उसके पास शक्ति है, उसके पास बल है, उसके पास विद्या है, उसका प्रवचन अच्छा है, उसका कीर्तन अच्छा है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा न होने के कारण हम चिंता करते कि भक्ति नहीं हो पाती, उसके कारण भक्ति होने के लिए सब चीजों की आवश्यकता है। तो काश मैं बुद्धिमान होता, काश मेरी मेमोरी पावरफुल होती, काश मैं कीर्तन अच्छा कर सकता था, काश मैं ड्रेसिंग अच्छा कर सकता था, तो ये काश 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 जो है ये भक्ति से आदमी को निकाल देता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो मिला है भगवान ने, जो दिया है उसको कभी कम नहीं समझना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है उतना हमारे हिसाब से ठीक है, अधिक की अपेक्षा न करें, है ना। भगवान जब देंगे तब देंगे, लेकिन अपेक्षा करना दूसरों को तुलना करके तो वो एक हानि हो सकती है। तो इस विषय को हम यहां विराम देते हैं। तो 17 से 23 तक हरिनाम सप्ताह है, उसकी अनाउंसमेंट होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you.